अलविदा 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 अलविदा।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
माजी से हाल ख्वाब से ताबीर तक मर्ज से तशखीस
ठीक हो जाएंगे आप
दवा से इलाज तक आप हमारे साथ हैं।
अपनी ज़कात और अतियात से इंडस हॉस्पिटल का साथ दीजिए और लाखों मरीजों का मुफ्त और मियारी इलाज मुमकिन बनाए।
फॉर डोनेशंस विजिट indushospital.ca।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
सैट्स कुटियोर और नेशनल ज़कात फाउंडेशन पेश करते हैं जश्न चांद रात। GTA में पहली दफा चांद रात सूफी कॉन्सर्ट, जहां हम मनाएंगे चांद रात एक सूफियाना अंदाज के साथ। चांद रात की खुशियां डबल हो जाएंगी। डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चूड़ियां, फूड कोर्ट और बहुत कुछ, सब एक ही जगह रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा। स्पॉन्सरशिप्स और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें 4165201372। मत भूलिए जश्न चांद रात।
इस रमजान अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्पफाई के जरिए, पैसे पहुंचे मिनटों में वो भी आसान और महफूज तरीके से गुड एक्सचेंज रेट के साथ। $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजेक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। रमजान में लैम्पफाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज लैम्पफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lampfi.com फॉर टर्म्स एंड conditions।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गया अते कैनेडा दियां जॉब्स खतरे च पा रहे। सानू एक ऐसा लीडर चाहिदा जो उसदे मुकाबले दा होवे ते कैनेडा नू अग्गे ले जा सके, पर मार्क कार्नी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। गल्लां वड़ियां वड़ियां ते कम कुछ भी नहीं। कैनेडियन स्ट्रगल कर रहे ने, आसमान छूंदियां मॉर्गेजेस ते ग्रोसरी प्राइसेस नाल ते बिजनेसेस खत्म हो रहे ने। कैनेडा फर्स्ट कंजरवेटिव ट्रंप दा मुकाबला करनगे अते कैनेडा नू पहल देनगे। पीएम पॉलिसी ऑफ टैक्सेस विच कटौती अते कीमतां घट करके जॉब वापस लेके आउणगे। मार्क कार्नी इस वास्ते नहीं है, पीएम पॉलिसी है। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द
Party
of Canada.
Music, news and information, messages and chit-chat.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد, اور جناب اب تک کی تازہ ترین خبریں اور سنانے کے بعد وہ باسی ہو جائیں گی, تو خوش آمدید کر لیں. یار یہ پوری عید کا نا انہوں نے ٹیاں پانچا کرا دیا, اتنا ویدر خراب نا. انہیں وہ میری جو ہاف سلیپ کی ٹی شرٹ تھی نا وہ مطلب نظر ایسی لگائی ہے, انہوں نے آپ سب کی عید برباد کر دیا. ابھی سے تم نے یہ پہن لی, چلیں جی پہلے تم کو خوش آمدید کہتے ہیں, ریڈ کارپیٹ بچھائے, نہیں شیمپین کلر کا کارپیٹ بچھاتے ہیں, ریڈ ویڈ پرانا ہو گیا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسی ہیں آپ؟
ڈبلیو ایس ہم ویسے ہی ہیں. نہیں مطلب ہے میں نے بادلوں کو لایا ہے ادھر کینیڈا پہ, میں نے بادلوں کے اندر سوٹیاں مار مار کے وہ اس کے سے پانی نکالا ہے.
نیت آپ کو میری وہ ٹی شرٹ اچھی لگی نہیں جو میں نے 21st of March اف آئی ایم ناٹ رانگ 20 مارچ کو جو ہے وہ آفیشلی ہمارا جو ہے ونٹر اوور ہوا, اور میں نے اگلے دن ہی ویدر اچھا
سپرنگ شروع ہو گیا
لیکن آپ نے آتے ہی مجھے ٹانٹ دیا کہ یار یہ کیا تم ابھی سے ہاف ٹی شرٹ پہن کے آ گئے ہو.
ہاں تو ہم تو سڑ رہے تھے نا کہ تم نے کیسے پہن لیا, ہمیں اتنی سردی لگ رہی ہے اور تم کیسے پہن پہن کے پھر رہے ہو.
ابھی آپ آج رات سے دیکھیے منڈے تک باہر نہیں نکل سکیں گے آپ.
اچھا اچھا
سب آپ عید اپنے رشتے داروں.
ویسے بھی یہ موسم جو ہے نا اس نے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہے وہ ڈیل سائن کی ہوئی ہے, جیسے ہی لوگ مرے ہوئے بےچارے سارے کا سارا وہ پورا ویک کام کر کے جیسے ہی ان کا کوئی ویکینڈ آتا ہے کہ کبھی شاید کوئی مسکین کوئی باہر نکل ہی جائے, کوئی اپنے لیے بھی کوئی ہاف سلیو شرٹ لے آئے یا کوئی پتلون خرید کے لے آئے, ویسے ہی ویدر خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اب جانا ہی نہیں ہے کہیں پہ, آپ ادھر ہی بیٹھے رہو گھر کے اندر اور آپ کو جو ہے کچھ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا رمضان ویسے بھی آپ کہیں نہیں جا رہے, اس کے بعد ابھی سوچا تھا چلو یار رمضان ختم ہو گیا شاید ہم جو ہے چلو اور کچھ نہیں, سنڈے کو تو عید ہے, سیٹرڈے کو شاید کچھ جو ہے باہر جانا
نہیں. اب تو منڈے تک 5 to 15 cm آئس
جی جی
اور فریزنگ رین.
ہاں
تو بس
یہ جو لے کر آیا نا
آپ نہیں
نہیں
آپ نہیں
یہ اس کے خلاف جو ہے نا یہ اب ایک مورچہ ان کے خلاف بھی نکالنا پڑے گا.
احتجاج کریں جی, جرنلسٹ کا کام ہی احتجاج کر رہے ہیں آپ جو ہیں اپنے جرنلسٹ. ویسے آپ کے اوپر آج کل پیکا کافی ایکٹیو ہوا پاکستان میں, بہت ساروں کو اٹھایا جا رہا ہے
بےچارے مسکین,
تو دیکھ لیں آپ پر بھی انٹرنیشنل بھی ایکٹ.
پھر کہتے ہیں جی ہم ڈیموکریسی چلا رہے ہیں, مطلب بڑا جوک
چلا تو رہے نا.
اچھا
سارا تو دیکھیں ادارے پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے.
اچھا اچھا چاہے آپ جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہیں, بس آپ جا کے بیٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈیموکریسی چلا رہے ہیں تو وہ بڑا ڈیموکریسی چل رہا ہے.
نہیں دیکھو ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہتے ہیں نا اس پہ میرا بلیو ہی نہیں ہے.
اچھا
سب سے پہلی چیز
کہتے ہیں تمہارے گھر میں ہی نہیں ہے تمہاری بیگم,
وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ 20 crore 22 crore عوام پاکستان کی بات کر رہے تھے, ابھی یہاں کی تو چھوڑ دیں, 22-23 crore عوام جو ہے وہ ایک پاگل آدمی کو سلیکٹ کر کے وزیر اعظم یا صدر بنا دیتی ہے. کہاں سے ہوتا ہے دنیا.
لیکن اب وہ اگر الیکشنز فیر ہوئے تو وہ الیکشن فیر ہی نہیں ہوتا, اس لیے آپ کے اوپر پاگل آدمی آ رہے
ہیں. تو برابر میں کیا فیر الیکشن ہوئے تھے, برابر میں تو فیر الیکشن ہی ہوئے نا,
برابر میں
وہاں کے حالات ہیں,
وہاں کے تو بس جو حالات ہیں وہ
یہ جمہوریت ہے, انجوائے جمہوریت.
ہاں لیکن وہ ان کے حالات اچھے اس لیے ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں سارا کچھ امریکہ میں لے کر آؤ بھائی, سارا کچھ امریکہ میں لاؤ.
دیکھیں یہ اس کی مثال کیا ہے بھائی جان, آپ ایک روٹی کھا رہے تھے نا, اب یہ روٹی واپس مجھے دو. آپ ایک روٹی کھا رہی تھی وہ بھی مجھے واپس دو, یہ روٹی آپ
نہیں, وہ یہ نہیں نا کہہ رہا ایک روٹی کھا رہے, وہ کہتے ہیں تم لوگ چار چار روٹیاں میری وجہ سے کھا رہے ہو امریکہ کی وجہ سے, اس لیے اس میں سے دو مجھے.
اچھا کہیں نہ کہیں امریکہ کو, دیکھیں امریکہ بڑا ہے اوکے فائن, امریکہ از اے بگ پاور, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے ٹرمپ صاحب کے اندر ایک وہ جو میں اور تکبر ٹائپ کا جو ایلیمنٹ آ گیا ہے نا, دیکھیں دنیا ویسے نہیں چلتی, یہ دس از ناٹ 70s, 60s, 80s کی دنیا جہاں آپ جو ہیں وہ اپنے جہاز لیٹ بھی بھیج دیتے, جنگ چل رہی ہے, وعدے کیے ہم بھیجیں گے, وہاں جہاز نہیں بھیجے آپ نے, بیڑے نہیں بھیجے. دوسری طرف سمجھتے ہیں جی ہم نے جو ہے دنیا بھر کی اکانومی اپنے ہاتھ میں رکھی, یعنی اب سنگل پولر یعنی ایک سائڈ پاور ہوتی تھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے آنے والی یہ جو سینچری ہے اور اگلے 20-25 سال 30 سال 50 سال جب تک زندگی رہی دنیا جی چلے گی, مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری اگین اسمپشن, جو پاور شفٹ ہے وہ یو ایس سے ایشیا شفٹ ہوگی.
ہاں ظاہر ہے پائی جان,
اب وہ ایشیا چائنا جائے, انڈیا جائے,
وہ چائنا جائے, ساری سارا یورپ
یہ شفٹ ہونا ہی ہونا ہے. और ये ट्रंप साहब को भी नजर आ रहा है।
ये उसमें उन्होंने सबसे बड़ा डिससर्विस किया अमेरिका को कि जितने अमेरिकन ब्लॉक्स थे अब वो सारे के सारे फ्रांस के आज जो है वो पहुंच गए हैं। वो फिर नहीं नहीं मैक्रॉन साहब नहीं, उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वो पहुंच गए हैं। यूरोप के बाकी लोग जा जाके शी साहब से मिल रहे हैं, बांग्लादेश के वो पहुंचे हुए हैं वो मिल रहे हैं। आपको पता है कि कितनी दोस्ती थी, गूढ़ी हमारे कहते हैं पंजाबी में, गूढ़ी दोस्ती इंडिया के साथ थी। इंडिया से भी उन्होंने खत्म कर लिया, उन्होंने कहा नहीं चाइना चाइना चाइना,
देखें चाइना ही आगे।
तो ये जो सबसे बड़ा पावर अभी बनेगा ना, उसमें ऊपर बैठा होएगा फिर अब चाइना, और चाइना सारों की जो है डोरें अब हिलाएगा। अब अमरीका से इसने इतना बड़ा डिससर्विस किया अपने कंट्री को कि सब कुछ इसने
ना। आज कारनी साहब के कैनेडा की एग्जाम्पल ले लेना कि किस तरीके
की तो बड़ी तारीफ उन्होंने की है।
नहीं लेकिन आज कारनी साहब ने स्टेट कहा कि हमने हमारे जो रिलेशनशिप आपके साथ रहे वो अब आगे इस तरीके से नहीं चलेंगे।
तो उसने तो पहले से ही जनाब अपना स्टेचर दिखा
दिया है। सोचिए कैनेडा एक आपका ऐसा अलाई जिसको कहते हैं छोटा भाई बड़ा भाई, उस तक से आप लड़ चुके हैं।
नहीं नहीं ये छोटा तो था ही नहीं बेचारा, ये वैसे ही इकॉनमी
वाइज आप कह लें इकॉनमी वाइज
ये सोया हुआ शेर बैठा हुआ था। इनके पास जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं कम लोगों के पास हैं, वो इन्होंने तो एक्सप्लोर ही नहीं कभी किए अमरीका के प्यार में। इन्होंने अमरीका के प्यार में सऊदी से लड़ाई कर ली, इन्होंने
चाइना से लड़ाई कर
ली,
रशिया से लड़के बैठे अभी,
रशिया से लड़ाई कर ली चाइना उसके अमरीका के प्यार में। अब तो ये सब नहीं चलेगा।
यही तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे थे कि जी हमने तो आपके खातिर जो है वो सब कुछ किया, हमने तो वो हुआवे की हमने अपनी हुआवे की जो सीएफओ थी सीईओ थी उनको पकड़ के आपको दिया और आपने हमारे साथ किया।
सिर्फ यही नहीं वॉर लड़ी
वॉर
इनके साथ लड़ते रहे हैं तो जो है।
लेकिन आप देखें चाइना की खूबसूरती क्या, मैं कल ही बयान देख रहा था, चाइना ने जो एम्बेसडर यहां चाइना में है एम्बेसडर कनाडा में, उन्होंने कैनेडियन से कहा कि जनाब वी कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन रीबिल्ड अवर रिलेशनशिप।
सारों को ही कह रहे हैं ना वो, सारों को कह रहे।
देखिए कितना टेम्परमेंट है उनका, जबकि आपने 100% आपने उनकी ईवी पे पावर वो लगाया, टैरिफ लगा दिया।
सारे यूरोप को वो कह रहे हैं ना, वो तो सारे यूरोप को कह रहे हैं।
कभी लड़ता नहीं है चाइना,
मिजाज ही नहीं है ऐसा,
लड़ने का मिजाज ही नहीं है,
मिजाज ही नहीं है उनका।
और मैं तो करते ही नहीं हूँ।
नहीं नहीं वो कहते हैं और ट्रेड करें, बस
और ट्रेड करो, इकॉनमी बढ़ाते हैं।
वही तुम्हारे वाली बात, इन्होंने कहा जी तुम्हारी गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाया कि उन्होंने गाड़ी खोल दी।
देखिए ये मैं बहुत रीड करने के बाद मुझे चाइना की
गाड़ी खोल दी, उन्होंने गाड़ी खोल दी। वैसे
देखिए बैटरी हर चीज अलग अलग भेजो
पेज तक पहले का। अब आपको पहले तो $20,000 की गाड़ी मिलती थी ना, अब 50,000 की ये पड़ेगी आपको। लोग खोल दिया,
जोड़ो अपने पास ले जाके खोल
दिया। तो तुम्हारा तो लेबर इतना एक्सपेंसिव है। अभी पाकिस्तान के अंदर क्यों ये यूरोपियन यूनियन वाले इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको अब पता चला है कि लेबर कितनी सस्ती है यहाँ पे और स्किल्ड भी है। स्किल्ड उनको आप एक स्पेसिफिकेशन दे दो कि ये काला और ये नीला बनना है, आप देखो जान दे देंगे अपनी, फिर वो काला और नीला ही बनाएंगे। स्किल्ड है, इतने स्किल्ड है।
हमारी गवर्नमेंट्स ने और हमारे इदारों ने पाकिस्तान में हुआ क्या, देखिए चाइना क्यों आगे निकल गया। चाइना में लेबर सस्ती है, इंडिया में भी लेबर सस्ती है, पाकिस्तान में भी लेबर सस्ती है। द प्रॉब्लम इज कैपेसिटी इश्यूज। चाइना ने सबसे पहले उस पर काम किया, उन्होंने कहा जी अगर इंडिया एक महीने में 100 गाड़ियां बना सकता है ना, हम एक महीने में 1,000 गाड़ियां बना लेंगे और पाकिस्तान एक महीने में 10 गाड़ी। एग्जाम्पल,
क्या प्यारी गाड़ियां बनाते हैं वो, क्या प्यारी गाड़ियां।
पाकिस्तान में लेबर चीफ तो है, मान लिया, लेकिन हमने इस चीज पर इंडिया ने बहुत तवज्जो दी इस चीज पर, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को, आपको पता है कोविड में जब बात हुई सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने में जो पूरी दुनिया भर को सप्लाई किया उनकी कैपेसिटी थी। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान का सिर्फ एक चीज हो गया कि हमने इंडस्ट्रीज को बिल्ड नहीं किया। हमने क्या किया,
नेशनलाइज कर दिया था नहीं भुट्टो साहब के जमाने में,
नेशनलाइज कर भी दिया और चले वो तो बात पुरानी हो गई।
हमारे
अब भी नहीं किया,
अंबानी और अदानी थे ना, तो हमने तो बर्बाद कर दिया सारा कुछ अपना, सारा कुछ नेशनलाइज कर
सब खत्म कर,
थैंक्स टू मिस्टर भुट्टो।
सारा आपका जो गारमेंट्स है जो जितना भी वो सब बांग्लादेश गया, इंडिया शिफ्ट हो गया, दुबई शिफ्ट हो गया। तो अब भी आपके पास टाइम है, आपके पास एक मैन पावर है, 20-22 करोड़ की आबादी, इसमें से 60-70% यूथ है और पढ़ा लिखा यूथ है, ऐसा नहीं है कि जाहिल है,
नहीं नहीं
पढ़ा लिखा यूथ है। आप उसको कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, हम उस पर काम ही नहीं करते। हम कहते हैं जी एक एक इंजीनियर तैयार कर दिया, एक फैक्ट्री लगा, नहीं यार इस फैक्ट्री में सिर्फ 10 फैक्ट्रियां लगनी चाहिए।
अब आप देखना आज हम बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान
जी, फिर खबरें सुनाएंगे पाकिस्तान की अच्छी खबरें, तो आई ऑलवेज वेलकम।
बस अच्छी खबरें बात सर, चले जी
सुनाइए।
दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बाशा जी। राजा बाशा के पास आपने आमिर का दोस्त बन के जाना है, अगर 1775 आपको बचाने हैं ठीक है, फिर ढेर सारे आपके जो है ऑटो और होम इंश्योरेंस में वो पैसे बचाएंगे। और आपने अगर अच्छे अप्लायंसेज लेने हैं और बंडल डील्स लेना है तो आप जाइए सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे, बहुत जबरदस्त आपको वो अच्छे डील्स देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका ट्रक फराटे भरता फिरे रोड के ऊपर, तो आप जाओ QTL के पास, क्विक ट्रक ल्यूब, बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक ऑयल्स डालते हैं और बहुत अच्छा आपका ट्रक अच्छी हेल्थ में रहता है, तो उसमें कभी खराबी ऐसा नहीं आती है। और अगर आपको अच्छे खाने खाने हैं तो फिर आप जाए फैसल चट्टा के पास विलेज टेस्ट में, उनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक है ओकविल में और एक है मिसिसागा में, तो दोनों में जाके, अब तो ईद भी आ रहा है तो आप जाके एंजॉय का मजा ले सकते हैं। और डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे आप जाइए, हमारे जो है डॉक्टर नाजिया रहमान जबरदस्त आपको सुविधाएं देते हैं, आप जाओ उनके पास तो बहुत अच्छे आपके दांत चमका देंगे, बिल्कुल लगेगा अभी अभी आप जो है ना वो फ्लॉसिंग करके आ रहे हो या और क्या ऐसे ऊपर आपने डेंटिंग वेटिंग किया है, तो ऐसा वो जबरदस्त वो कर देते हैं। और अगर आपको ऐसी वाली बूथी नहीं चाहिए जैसे कि मेरी है, आपको बहुत ही अच्छा ब्राइट सा फेस जिसमें कि आपका सारा स्किन वगैरह खिंचा हुआ, तो फिर डॉक्टर अंकुश के पास जाओ आप, बहुत ही अच्छी वो आपको सर्विसेज अब देते हैं, तो शक्ल आपका बिल्कुल चेंज हो, यानी कि आप खूबसूरत हो जाओगे, यानी तो ऐसा मेरी तरह का बूथी लेके फिरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, पहली तो हम आपको खबर सुना दें जो कि न्यूज ऑफ ऑल न्यूज है, मदर ऑफ ऑल न्यूज है, बल्कि वो यही है कि आज ट्रूथ सोशल के ऊपर जो है वो इन्होंने, ट्रंप साहब ने एक अपना ट्वीट डाला और उन्होंने कहा जी कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बड़ी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव कॉल हुई है मार्क कार्नी के साथ और हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री किया है और इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन हम जो है बात करेंगे पॉलिटिक्स पे, बिजनेस पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे, और ये चीज जो है ये दोनों के लिए, कनाडा और यूएस दोनों के लिए अच्छी होगी। फिर उन्होंने जी थैंक यू बोला, उन्होंने थैंक यू बोला मार्क कार्नी को, उन्होंने कहा कि जो सारे मैटर्स थे जो मैंने उनके साथ डिस्कस किए थे उसके लिए उन्होंने बड़ा अटेंशन दिया, तो ऐसे है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है जब से कार्नी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्च 14 से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका पहला ट्रिप अमरीका के बजाय फ्रांस और फिर यूके का था, तो विच वॉज वेरी एबनॉर्मल। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब ने इनके साथ बड़ी तमीज के साथ बात की, जैसे कि ट्रूडो साहब को कहते रहते थे गवर्नर ट्रूडो और कहते रहते थे तुम्हारे मुल्क को मैं 51st स्टेट बनाऊंगा, कोई इस तरह की बदतमीजी उन्होंने इनके साथ नहीं की, बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री किस्म का एटीट्यूड था उनका इनकी तरफ। और जो था इन्होंने जो ट्रूडो साहब को और भी बहुत सारे एक्यूजेशंस किए थे कि तुम्हारी वजह से ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ है और ये क्योंकि तुम जो है ये बातचीत इसलिए करना चाहते हो कि तुम पावर में रहना चाहते हो, तो बड़े एलिगेशंस भी लगाए थे। अब कार्नी साहब से लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं किया है, मुझे लगता है कि हौले हौले करेंगे, बड़े समझदार किस्म के जो है वो बंदे हैं। और कल तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कैंपेन जो थी अपनी एक दिन के लिए बंद कर दी थी जब ट्रंप साहब के ये थ्रेट्स और आना शुरू हो गए थे कि जी April 2nd से हम और आपके ऑटो पे भी लगा रहे हैं, और इन्होंने फिर मुलाकात की थी अपनी कैबिनेट के साथ ओटावा में, आज इन्होंने जो है बातचीत की है प्रीमियर्स के साथ। और जब इनसे पूछा गया कि भाई अभी ये 2nd अप्रैल को आ रहे हैं सारे टैरिफ्स, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी गवर्नमेंट जो है वेट एंड सी अप्रोच लेके जाएगी और एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी क्योंकि टैरिफ्स अभी नेक्स्ट वीक में आने हैं, और उसके बाद फिर ये सारा कुछ करके ट्रंप साहब से बात करके प्रीमियर से बातें करके फिर ये मॉन्ट्रियल की तरफ आज जो है अपनी कैंपेन पे निकले हैं। पीए पॉलियस साहब जो हैं जी, उन्होंने अपना जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उसको आज अनवेल किया है और उसके अंदर उन्होंने क्राइम के बारे में बहुत सारे बात की है पीए पॉलियस साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि ये मैंडेटरी लाइफ सेंटेंसेस दूंगा मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स और फेंटेनॉल ट्रैफिकर्स को और मैस गन स्मगलिंग करने वालों को। एक्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शंस होनी चाहिए इन लोगों की। एक तो वो कहते हैं जी कि एनीवन जिसको के कन्विक्ट किया जाएगा कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उसको जी दी जाएगी लाइफ सेंटेंस, किसी को कन्विक्ट किया जाएगा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग 10 or more इलीगल फायर आर्म्स उसको जो है लॉकडाउन में रखा जाएगा और उसको कभी भी बाहर नहीं निकाला। उन्होंने कहा जी उसकी चाबी हम फेंक देंगे, उसको निकालना नहीं है हमको। फिर वो कहते हैं जी कि ये ऑटोमेटिक बेल जो हो जाता है जिसमें कि लोगों को चार्ज किया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, तो इन लॉज को भी हम खत्म कर देंगे और लॉज जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इनको स्ट्रेंथन करेंगे और प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको कोई ये डर नहीं या इंटिमिडेशन नहीं रहेगा, यानी कि क्योंकि ये लोग बाहर निकल के उनको बहुत ज्यादा डराते धमकाते हैं, जाहिर है कि जो लॉयर्स हैं तो वो कहते हैं उनको कोई डर नहीं रहेगा। फिर उन्होंने जो लिबरल्स और NDP के लॉज है उनको क्रिमिनल लॉज जो है उनको बहुत ही वीक बोला, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये री ऑफेंड करते रहते हैं लोग क्योंकि इनको बेल मिल जाता है ये लोग बाहर आ जाते हैं। अभी और डिटेल्स जो हैं अभी इस वक्त वो BC में हैं नैनेमो में, तो वो वहां पे अभी दे रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा एतराज फिर से आया पीए पॉलियस के पास कि इनका जो हैमिल्टन का रैली था वहां पे बहुत सारे लोग जो आ रहे थे उन्होंने एक तो अजीब चीजें पहनी हुई थी और जो दरवाजा था उसके ऊपर भी बहुत सारे नाइव्स और ई सिगरेट्स और मेगा कैप्स जो है, आपको पता है मेगा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो ट्रंप साहब का नारा है, तो वो उसकी चीजें पड़े हुए थे और जो भी लोग वहां से जा रहे थे निकल के वो चीजें लेके जा रहे थे, तो लोगों ने बहुत एतराज किया क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि मैं मेगा गाय नहीं हूं, मागा गाय नहीं हूं मैं, यानी कि मैं ये ट्रंप साहब का मेट अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसके अलावा जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं पीए पॉलियर साहब उसके ऊपर भी बेतहाशा लोगों का एतराज आ रहा है क्योंकि वो जिस तरह की एग्जैक्टली ट्रंप साहब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो ही ये भी कर रहे हैं, तो लोगों को जो है ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ट्रंप साहब ही ना, कहीं एक और कैनेडा में भी आ जाए, तो काफी लोगों के जो है वो कंसर्न आ गए। जगवीर सिंह साहब जो है जी उन्होंने जो है हाउसिंग के ऊपर अनाउंसमेंट किया है और कंटेंट्स तो उसके वही थे, उन्होंने रिसाइकल कर रहे हैं बार 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 बार, उसी तरह अपने साथ जो है वो उन्होंने एक वो लेडी रखी हुई थी एरन फिल्बी जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि उसने रेंट किया हुआ है अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट इन ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज में, जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि जी ये कॉर्नी साहब जो है इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो वैसे तो आज उन्होंने थोड़ा सा अपना टोन चेंज किया, उन्होंने कहा जी मैं डायरेक्टली तो कानी साहब को इस चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तीन चीजें करूंगा जो उन्होंने अपना अनाउंस किया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये जो एग्जिस्टिंग इन्होंने जो अफोर्डेबल रेंटल बिल्डिंग्स लिया हुआ है उनको मैं बैन करूंगा, फिर मैं कट करूंगा कॉरपोरेट ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि लो इंटरेस्ट फेडरल लोन्स लेते हैं उनको, वो हम खत्म करेंगे, उनको कोई भी टैक्स हॉलीडे नहीं दिया जाएगा, फिर मैं बूस्ट करूंगा रेंटल प्रोटेक्शन फंड टू हेल्प एनजीओज बाय अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स जब वो मार्केट में आएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये एक इनकी पार्टी ने रेंट किया है एक प्लेन, हालांकि उसके ऊपर रैप तो एनडीपी का नहीं चलाया है लेकिन वो रेंट किया हुआ है, तो उसमें ये बैठ के जो है फिर ओटावा चले गए हैं। तो ये जनाब आज तीनों जो बड़े लीडर्स हैं उनकी ये रही। हमारे ट्रोरंटो की जो मेयर हैं ओलिविया चाओ, वो बहुत सारे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनको इंटरव्यूज दे रही है और उन्होंने एक इंटरव्यू सीएनएन को दिया है और दूसरा जो है एमसीएनबीसी को दिया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा डिनाउंस किया है ये जो टैरिफ्स है ये जो लगाए हैं इन्होंने ट्रंप साहब ने। तो इन्होंने कहा जी कि हम अब बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हैं ये सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्होंने जो इधर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि नॉर्थ अमेरिका का फोर्थ लार्जेस्ट जो सिटी है वो ट्रोरंटो है और इसका बजट जो है 79 बिलियन डॉलर्स का है, और ट्रंप साहब ये जो हमारे पे जो एतराज कर रहे हैं और हमारे कार्स के ऊपर जो है ये टैरिफ्स लगाना चाहते हैं और ये कंस्ट्रक्शन और ग्रोसरीज की जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगी। ओलिविया चाओ की जनाब तस्वीर जरा दिखा दें, तो ओलिविया चाओ जो है वो कह रही है कि ये जो हमारे अब इन्होंने इतने खराब कर दिए हैं ये जो टाइज हैं ये बिल्कुल भी अब मुझे नहीं लग रहा कि ये रिपेयर हो सकते हैं रिकवर हो सकते हैं विच इज वेरी बैड। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन तो जानते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं और वो हम कनेडियन से प्यार करते हैं। डीसी में आजकल ओलिविया चाओ साहिबा वहां पे एक ट्राइलेटरल ट्रेड समिट हो रहा है जिसको होस्ट किया है यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ मेयर्स, जिसमें कि ये ट्रंप साहब के टैरिफ्स को और 25% स्पेशली जो इंपोर्टेड ऑटोज पे ये जो लगा रहे हैं अप्रैल 3rd को, तो वो कह रहे हैं कि जी अब ये जो है उसके ऊपर बातचीत वो कर रही हैं और ये इंटरव्यूज भी दे रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमने एक लॉन्च कर दिया है कि हम बिल्कुल अपनी अब चीजें खरीदेंगे बाय लोकल, हमने जो है ये कैंपेन लॉन्च की है, हम बहुत अच्छी खुद अपनी चीजें बनाते हैं और हम यही कैनेडियंस को बोल रहे हैं कि अपनी चीजों से प्यार करो अपनी चीजें खरीदो और वही तुम लोग लो। इसके साथ साथ जो आज न्यूज आई कि प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो है उसने भी बात की है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉबर्ट लुटनिक से, और लुटनिक साहब के ऑफिस ने कहा है कि जो गाड़ियां जो कनाडा में बन रही हैं अगर उसमें एटलीस्ट 50% जो पार्ट्स है वो यूएस के है तो फिर उन गाड़ियों के ऊपर शायद जो है ड्यूटी नहीं लगेगी, तो यानी कि 50% पार्ट्स जो है वो तो आने ही पड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि जी यूएस से तभी आप बच सकते हैं इन टैरिफ से, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ऑन्टेरियो है वो इट इज रियली बिग ऑन जो है ऑटो सेक्टर। तो कल भी मैंने आपको बताया था प्रीमियर साहब ने कहा था बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, तो खास तौर पे जो यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स है कोई 100,000 का कुछ अंदाजा था ऐसे जाएंगे। अल्बर्टा की जो प्रीमियर है जी डैनियल स्मिथ, वो उनके तो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो ही नहीं रहे हैं। अब वो जो है शी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक ट्वीट डाला कि शी हैड अ ग्रेट टाइम एट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का प्रेजर यू ईस्ट कोस्ट गाला है, उसके अंदर आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड हैड मीनिंगफुल फायर साइड चैट विद बेन शपीरो ऑन कैनेडा यूएस ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड रिमूविंग टैरिफ्स। तो अब उसने कहा कि जी मैं आई स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अल्बर्टन्स एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब ये जो उन्होंने कहा जी कि ये मैसेज है मेरा, ये अमेरिकन्स भी करेंगे सैकड़ों की तादाद में उसको शेयर और सोशल मीडिया पे भी हजारों लोग शेयर करेंगे, लेकिन इनका पहले भी जो आपको पता ही है कि डिसीजन था टू फ्लाई टू फ्लोरिडा, तो उसको भी एतराज किया था जो मारा-लागो में जाके मिली थी, अब भी ये फ्लाई वहां पे करके गई है और ये जो इवेंट होस्ट किया है शपीरो ने जो कि फार राइट मीडिया पर्सनालिटी है और जो सपोर्ट करता है कनाडा का एनेक्सेशन ऑफ कनाडा आईडी, ट्रंप साहब का एनेक्सेशन ऑफ कनाडा आईडिया, तो ये उस तरह का ये बंदा है जिसको ये मिले हैं। और इसके साथ साथ ये जो है ये बहुत ही मिनिमाइज करता है हार्म्स ऑफ स्लेवरी एंड क्लाइमेट चेंज, तो बहुत ही फार राइट किस्म का बंदा है। अल्बर्टा एनडीपी के जो लीडर हैं नाहिद नैंशी, उन्होंने कहा जी कि ये जो इनका मूव है ऐसा जो वो डिस्पिकेबल है और इन्होंने इनको बहुत ही एक्यूज किया, उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा लेके उसके ऊपर ये फंड रेजिंग करने के लिए गई है एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्मिथ जो है उसने इनको डिफेंड किया अपने आप को और उन्होंने कहा जी कि मेरा इनसे मिलना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये भी बिलीव करते हैं लोअर टैरिफ्स में, तो इसलिए। तो पता नहीं अब व्हाट इज गोइंग ऑन, देखेंगे अभी। कम्यूटर्स ऑफ टीटीसी एंड गो ट्रांजिट जो हैं उनको ये इस वीकेंड के ऊपर काफी डिस्ट्रप्शंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही के ऊपर जो स्केड्यूल्ड ट्रैक वर्क चल रहा है खासतौर पे इनकी पोर्शंस ऑफ लाइन टू एंड लेक शोर वेस्ट गो लाइन पे, तो इसमें काफी लोगों को मुश्किलें आएंगी। लेट सैटरडे इवनिंग से ये जो है राइडर्स ऑन लेक शोर वेस्ट लाइन जो है मॉडिफिकेशन देखेंगे और थ्री लेट नाइट जो स्ट्रिप्स है वो फिर एल्डर शॉर्ट गो स्टेशन पे खत्म हो जाएगी। शटल बसेस जो है वो चलते रहेंगे बियॉन्ड वेस्ट हार्बर गो और कंटिन्यू रहेंगे संडे तक। संडे को फिर जो लेक शोर वेस्ट ट्रेन हैं वो रन नहीं करेंगी पास्ट वेस्ट हार्बर गो और कोई भी गो स्टेशन एट सेंट कैथरीन्स एंड नायग्रा फॉल्स पे काम नहीं करेगा। नायग्रा फॉल्स के कस्टमर्स जो हैं उनको अब एडवाइस किया जा रहा है कि वो रूट 12 ले लें गो बसेस का। टीटीसी कस्टमर्स जो है उनको भी कहा गया कि आप प्लीज प्लान अहेड। लाइन टू जो ब्लू डैनफोर्ड पे सस्पेंड की जाएगी बिटवीन विक्टोरिया पार्क एंड कैनेडी स्टेशन और वार्डन स्टेशन जो है वो भी क्लोज रहेगा। तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, वैसे तो वेदर खराब ही है तो घर पे बैठो भाई, लेकिन जाहिर है कि कुछ लोग बाहर भी जाना चाहते हैं नो मैटर हाउ बैड द वेदर इज, तो अब उनको मुश्किल आएगी। स्टैट्स कनाडा की जनाब आज एक खबर आई है और उसके मुताबिक इकोनॉमी जो है उसने पिकअप किया था जनवरी में, लेकिन फरवरी में आते आते फिर से वो यानी कि टूस हो गई हमारी लैंग्वेज में। जीडीपी जो था वो राइज किया था 0.4% जनवरी में ड्यू टू बूम इन ऑयल एंड गैस क्वेरिंग एंड माइनिंग, उसके बाद ये राइज किया था फ्रॉम 0.3% ग्रोथ इन दिसंबर और इसके अंदर गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो बड़े हॉट रहे थे जनवरी में, दे रोज टू 1.1% जो कि बिगेस्ट वन मंथ जंप है इन थ्री इयर्स। मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज कंस्ट्रक्शन जो है वो भी ग्रो किए थे जनवरी में। फरवरी में आते आते चीजें बहुत ही स्लो हो गई थी, एक तो हार्श विंटर था और फिर ये जो तीन महीने का टैक्स सेल्स टैक्स हॉलीडे दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने वो भी खत्म हो गया। आज जनाब बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म के पावरफुल अर्थक्वेक्स आए हैं म्यांमार और थाईलैंड के अंदर और वहां पे काफी सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज मिला है, तकरीबन 150 के करीब लोगों का वहां पे डेथ हो गया। तो ये देखिए एक छोटा सा वीडियो अब आपको दिखाते हैं कैसे, ये देखिए आप लोग खड़े हैं देख रहे हैं और ये देखे कैसे ये बिल्डिंग गिरा है जब ये अर्थक्वेक आया, ये देखे और लोग फिर कैसे भागे हैं वहां से, तो काफी जो है ये वहां पे रहा ऐसा। अच्छा जी, तो यहां पे म्यांमार जो है उसके अंदर 144 लोगों की डेथ हुई है, 432 जो है वो इंजर हुए हैं। थाईलैंड के अंदर 9 लोगों की डेथ तो सिर्फ बैंकॉक में हुई है। ये 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसने हिट किया था म्यांमार और थाईलैंड को, आया था आउटसाइड म्यांमार एंशियंट कैपिटल मंडलेया और पहले तो ट्रेमर्स जो थे वो 6.4 मैग्नीट्यूड के थे और इसका जो कैपिटल है नेपी डॉ वहां पे देखी जा रही थी कि काफी बिल्डिंग्स जैसे कि अभी भी हमने आपको दिखाई है ये गिरी है डिस्ट्रॉय हुई है और जो फिर जो क्रू था वो पुल करने की कोशिश कर रहा था विक्टिम्स को रबल में से। बैंकॉक में 33 स्टोरी बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो भी बहुत बुरे तरीके से गिरी, इसमें भी 8 लोगों की डेथ हुई। इन सैगेइंग 90 ईयर ओल्ड एक ब्रिज था जो कि वो भी कलैप्स कर गया और हाईवेज बहुत सारे डैमेज हुए और ट्रेमर्स जो हैं इसके चाइना में भी फील किए गए। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी जॉन नोएल बैरोड वो अब पहुंचे हुए हैं बहुत ही पावरफुल फ्रेंको चाइनीज जो है टाइज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जियो पोलिटिकल अपहीवल बहुत सारा हो गया है जब से ट्रंप साहब का एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे आया है और वो कह रहे हैं जी कि मैं कोई किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री को नहीं करूंगा। तब यूरोप जो है सारा जो है चाइना की तरफ देख रहा है। इनकी मुलाकात आज अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी के साथ हुई और उसने उन्होंने बात की यूक्रेन के वॉर के बारे में, ट्रेड के बारे में विद यूरोप, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रांस और जर्मनी तो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है यूरोप की, तो ये जो है ये अब इनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ये एड्रेस कर रहे थे स्टूडेंट्स को एट बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी में उसके बाद उनसे मिलने के बाद, और इन्होंने कहा जी कि चाइना ने इम्पोज कर दिए थे जो है प्रोविजनल टैरिफ्स ऑफ 30.6-39% ऑन यूरोपियन ब्रांडी इम्पोर्ट्स डे आफ्टर यूरोपियन यूनियन वोटेड फॉर टैरिफ्स ऑन चाइनीज ईवीज। और ये मूव जो था इसने जो फ्रेंच पानियाक जो ब्रांड्स थे उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इनका बिल्कुल 1/4 तक इनके जो थे वो एक्सपोर्ट्स आगे थे लास्ट ईयर। उसी सिलसिले में आज जो है ये बातचीत कर रहे हैं फ्रांस जो है उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम हर तरह की ट्रेड वॉर जो है उसको हम बिल्कुल नापसंद करते हैं और यूरोपियन यूनियन और फ्रांस और चाइना के बीच में बहुत ओपन डायलॉग होना चाहिए और हमारे दोनों ने फिर ये डिसाइड किया है कि यूरोप और फ्रांस और चाइना के बीच में एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे ताकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ कम्युनिकेशन की जा सके अगर कोई प्रॉब्लम रहे। इसके बाद वैंग साहब ने इस मीटिंग को काफी कंस्ट्रक्टिव कहा और कहा कि हम बिल्कुल हमारे दरवाजे ओपन हैं भाई फॉर ट्रेड टॉक। सो चाइनीज आर प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्ट। अभी तो फ्रांस आया है और आप देखिएगा कि होले होले दूसरे जो यूरोप के कंट्रीज है वो भी आने लगेंगे। यूएस एयर स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने तकरीबन 40 लोकेशंस पे हुथी कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ यमन इंक्लूडिंग सना जो है उसके अंदर अटैक्स किए हैं जिसकी वजह से काफी मैसिव नुकसान हुए हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल होम्स शॉप्स कंप्लीटली डैमेज हुए हैं सादा मारिब अल जवाफ और हुदेदा के एरिया के अंदर इन्होंने टारगेट किया है। यूएस स्ट्राइक्स ने किए हैं सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जिसको के दोनों ही सिविलियंस और मिलिट्री ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। इन स्ट्राइक्स में 7 लोगों की डेथ्स हुई हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बिल्कुल खत्म हो गए थे। सेंटकॉम जो कि इनकी सेंट्रल कमांड है उसने जो उसको अथॉरिटी दी है व्हाइट हाउस ने कि वो विदाउट एनी प्री अप्रूवल स्ट्राइक कर सकता है इनके ऊपर और जो है ये रेड्स जो हैं ये कितनी की हैं अब इन्होंने तकरीबन 40 लोकेशंस पे वो अभी तक नंबर नहीं है। जाहिर है कि 40 लोकेशंस पे अगर आप कम भी चला के चलें तो 40 तो की ही हैं, तो बहरहाल और भी बहुत ज्यादा इन्होंने जो हैं वो अटैक्स किए हैं। न्यू स्ट्राइक्स जो हैं अब जो आज के ही आंकड़े आए हैं उसमें 57 लोगों की डेथ्स हुई हैं और ये उस वक्त शुरू हुए हैं जब हुतीज ने कहा कि रेड सी में से हम कोई भी जो ये इसराइल के शिप्स हैं उनको नहीं गुजरने देंगे क्योंकि वो जो है कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा स्ट्रिप में नहीं जाने दे रहे हैं। ट्रंप साहब ने जनाब आज एक और जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है और ये भी इंतहाई बस थकेला ही कह सकते हैं आप, ये है टू रिमूव द वो कहते हैं जी कोर्सिव एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी फ्रॉम स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट जो कि दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो है यूएस आर्ट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर और भी 21 इंडिविजुअल म्यूजियम्स हैं, नेशनल जू है। तो वो कहते हैं जी कि हम जो है इसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को इंचार्ज बनाया है टू ओवरसी द चेंजेस टू रिस्टोर द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट्स टू राइटफुल प्लेस। और वो कहते हैं जी कि दिस शुड बी अ प्लेस टू इंस्पायर अमेरिकन्स एंड देयर ग्रेटनेस। तो ये चीजें जो हैं ये खटी फटी और ये जो जानवर और फलानी चीजें वो सब यहां से हटाओ। डीसी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो ये जो है जैसे मैंने आपको भी बताया इसमें 21 इंडिविजुअल म्यूजियम्स है। तो अब ये चीज जो आप ये किधर लेके जाएंगे इतने बड़े बड़े इन्होंने जो ये स्केलेटन्स बनाए हुए हैं। तो बस बहरहाल देखेंगे भी। पुटिन साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि यूक्रेन जो है उसको अंडर टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन रखा जा सकता है एट पॉइंट ऑफ द पीस प्रोसेस। आज ये बात कर रहे थे नॉर्थ कोरियन लीडर्स के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर नॉर्थ कोरियन लीडर्स जो हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है और दूसरे जो मॉस्को के एलाइज है उनको भी। उन्होंने आज बताया कि जो सर्विसमैन है मर्मैनिक्स में वहां पे उनसे भी एक दफा जो बात इन्होंने की थी उसका जिक्र इन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि हम पीस प्रोसेस की तरफ जाएंगे और इस वॉर को एंड करेंगे, लेकिन बहुत सारे इन्होंने सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये न्यू इलेक्शंस एक तो होने चाहिए यूक्रेन में और इसके अंदर जो है कंट्री को एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे आना चाहिए। एक टेम्पररी तो कुछ आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड इट्स पार्टनर्स, लेकिन ये वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको के लोगों का ट्रस्ट जो है वो रहे और फिर हम जो है पीस ट्रीटी की तरफ बात करेंगे। वो कहते हैं जी मैं और भी कंट्रीज को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहता हूं जैसे प्योंगयांग, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड ऑल ब्रिक्स कंट्रीज। तो फिर वो कहते हैं जी आगे चलेंगे। यूक्रेन के जो एलाइज हैं यूरोप में वो बिल्कुल ये एग्री नहीं करते हैं कि प्रपोज डिप्लॉयमेंट जो ऑफ ट्रूप्स की जो बात की जा रही है कि उसको किया जाए अगर आपने रशिया के साथ जो है डील बनाना है। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नहीं चाहते हैं कि अपने ट्रूप्स को यहां पे लगाएं। फ्रांस जो है और प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो है वो होस्ट कर रहे हैं तकरीबन 30 कंट्रीज को, नेटो, यूरोपियन यूनियन के चीफ्स को पेरिस में इन थर्ड समिट ऑफ कोलिशन ऑफ विलिंग उसका नाम है कि ये कैसे ये वॉर रोकी जा सकती है वियतनाम में। और ये जो इसकी इनिशिएटिव लिया था ये फ्रांस और यूके ने मिलकर लिया था, जो कॉर्स स्टॉर्मर हैं उन्होंने भी कहा था कि यस दिट शुड गो हैड। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जियो मेलोनी उन्होंने कहा जी कि नहीं हम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राउंड फोर्सेज जो है उसके अंदर एंगेज करें। चेक पीएम जो है उन्होंने भी जो है पेट्रे फियाला उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल प्री मेच्योर डिस्कशंस हैं कि यूरोपियन यूनियन से ट्रूप्स वहां पे होने चाहिए और उसको एक कंडीशन बनाना चाहिए सीज फायर के लिए। मैक्रॉन ने कहा कि आपको इस वक्त कुछ कमिट करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम इसके ऊपर एक प्रपोजल दे सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मैक्रॉन साहब ने 2.16 बिलियन US डॉलर्स और इन मिलिट्री एड यूक्रेन के लिए आज अनाउंस किया है। दैट विल कंटेन मिसल्स, वॉर प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम। रशियन मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन मरिया जैकरोवा, उन्होंने आज एक्यूज किया है फ्रांस और यूके को कि वो एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसकी वजह से मिलिटरी इंटरवेंशन होगा यूक्रेन में अंडर द गाइज ऑफ पीस कीपिंग मिशन। और उन्होंने वार्न किया कि अगर आपने ऐसा किया तो नेटो और रशिया बिल्कुल डायरेक्ट क्लैश के उसके ऊपर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जेलेंस्की ने आज एक्यूज किया पुतिन को, उसने कहा कि ये इस तरह की बातें करके यूरोप और यूएस के बीच में जो है लड़ाई बना रहा है। पाईजान उसको लड़ाई क्या बनाने की जरूरत है, वो तो जो माशाल्लाह से ट्रंप साहब हैं उनके तो खुद की अपनी हरकत ही ऐसी है जो वो कर रहे हैं, सारों को नाराज उसके लिए वो कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं। ईरान जो है जी उसने आज कहा है कि हमने भी जो है ओमान के थ्रू ट्रंप साहब को एक लेटर भेजा। आपको याद है ना कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ओमान के थ्रू अब ट्रंप साहब का थोड़ा सा स्टांस जो है ईरान के लिए थोड़ा नरम पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हम उस पर अटैक भी नहीं करना चाहते लेकिन अगर उसने हमारी बात ना मानी तो ये ऑप्शन भी है, लेकिन हम एक लेटर उन्होंने भेजा था। ये लेटर जो था लेकर आए थे एक तो अनवर गरगाश जो है सीनियर इमराती डिप्लोमैट जो कि विजिट कर रहे थे ईरान को मार्च 12 को, ये लेटेस्ट था। उससे पहले ओमान के थ्रू इन्होंने एक लेटर भेजा था टू रीच अ न्यू न्यूक्लियर डील विद ईरान। ईरान का जो मीडिया है उसने साइट किया है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची को जिसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान ने अपना रिस्पांस जो है ट्रंप साहब के लेटर का दिया है और हमने भी थ्रू ओमान भेजा है उनको और इसमें हमने कहा जी कि हम बिल्कुल आपके साथ डायरेक्ट टॉक्स में एंगेज नहीं करेंगे जब तक आप हमारे पे मैक्सिमम प्रेशर बनाए रखेंगे और हमको मिलिटरी थ्रेट्स देते रहेंगे। हाँ इनडायरेक्ट टॉक्स हम आपके साथ जरूर करेंगे। उन्होंने कुछ डिटेल्स तो नहीं दिए इसके लेटर के और ज्यादा लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये लेटर हमारा जो है ट्रंप साहब को ये व्यू जरूर देगा कि हम क्या चाहते हैं और करंट सिचुएशन क्या है। ये अच्छी भली एक डील हो रही थी ईरान के साथ 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील जब ट्रंप साहब ने विदड्रॉ कर लिया था और फिर बाकी की पावर्स ने ईरान के साथ जो है ये डील की थी इस उसमें एक्सचेंज में कि हम सैंक्शंस आपसे उठा लेंगे। तो अब फिर से जो है ईरान ने वही बात दोहराई है। رمضان سے پہلے یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہے شیخ محمد بن زائد ال نہیان، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ تقریباً 1295 پرزنرز کو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو پرائم منسٹر ہے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، اس نے بھی کہا تھا کہ ہم پارڈن کریں گے 1518 کو، کیونکہ جو ہولی منتھ آف رمضان ہے وہ مرسی اور ریکنسلیشن شو کرتا ہے. اس نے کہا جی اوور اس میں جو ہے اوور 500 انڈینز بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس جے شنکر صاحب کی کچھ ملاقاتیں یو اے ای کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگوں کو آپ چھوڑو، اور جس پہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اب عید الفطر جب آئے گی تو اس پہ ہم چھوڑ دیں گے، یعنی کہ دو دن کے بعد یہ چھوڑنا شروع کر دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے انڈیا کے جو کچھ سٹیزنز ہیں، جیسے کہ انڈیا کی شہزادی خان تھی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا یو اے ای کے اندر. حالانکہ انڈیا نے بہت زیادہ ان کے منتے کیے تھے یو اے ای کے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ مرڈر کے اندر انوالوڈ ہے. اس کے علاوہ دوسرے انڈینز جو ہیں ڈیتھ رو کے اوپر ہیں، محمد رینیش اور مرلی دھرن فرام کیرلا دونوں، اور ان کے اوپر بھی مرڈر کے چارجز ہیں، تو ان کو بھی جو تھا ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. تو لیکن اب باقی کے جو ہیں 500 انڈینز کو چھوڑ رہے ہیں یہ. بنگلہ دیش کے جو محمد یونس صاحب جو ہیں وہ بھی چائنا پہنچے ہوئے ہیں جی، اور ان کی بھی ملاقات چائنیز پریزیڈنٹ شی جنپنگ کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈھاکا اب آپ کے ساتھ بہت کلوزلی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ بہت کلوز تھے ان کے جو رائیول ہیں چائنا کے انڈیا، ان سے شیخ حسینہ کے زمانے میں، اور جب سے وہ وہاں پہ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے ڈھاکا کے اندر اور بنگلہ دیش میں جو ہے بڑا نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے کہ کیوں اس کو شرن دی جا رہی ہے وہاں پہ، یعنی کہ کیوں پروٹیکشن دیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ جو ہے آپ کے ساتھ زیادہ ٹائز بنانا چاہتا ہے، اور یہ ان کا فرسٹ سٹیٹ وزٹ ہے ٹو چائنا جب سے یہ جو ہے یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بنے ہیں یہاں پہ. شی جنپنگ نے بھی یونس کو کہا کہ بالکل بیجنگ جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے ایٹ ایوری لیول، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بالکل گڈ نیبرز اور فرینڈز اور پارٹنرز ہیں، اینڈ آور ریلیشن شپ از بیسڈ آن میوچل ٹرسٹ. دونوں جو ہیں بڑا فرملی اب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے کور ویلیوز ایک جیسے ہیں، تو ہم کو اور زیادہ کوآپریشن جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا ضرورت ہے، اسپیشلی ان واٹر کنزرویسی، انفراسٹرکچر، کنسٹرکشن، ڈیجیٹل، مرین، انوائرمنٹ سیکٹرز میں. ڈھاکا نے کہا کہ جی جو یونس صاحب کا وزٹ ہے وہ شو کرتا ہے کہ بنگلہ دیش از سینڈنگ اے سرٹن میسج. اب وہ سرٹن میسج کیا ہے وہ تو اب کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے گا کہ بھئی اب ہم زیادہ انڈیا کی طرف کوزی اپ نہیں ہو رہے، ہم کوزی اپ ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ. پاکستان کے اندر ایک بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ کو چیئر کیا ہے جی پاک پرائم منسٹر شہباز شریف نے، پروونشل لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کو بھی اپنا فلم اور ڈرامہ جو ہے اس کو ٹول کی طرح یوز کرنا چاہیے ٹو کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ نیریٹو اینڈ ری انفورس نیشنل سٹانس اگینسٹ ٹیررزم. یہ میٹنگ جو تھا یہ پی ایم ہاؤس میں ہوا تھا، اور اس کو اٹینڈ کیا تھا سول اور ملٹری لیڈرشپ نے، اور اس میں فور پروونسز آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی جو ریپرزینٹیوز تھے وہ تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا ہے اس میں پرپیٹریٹرز کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم کو اگریسولی ایک اینٹی اسٹیٹ جو کیمپین چلائی ہوئی ہے اس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، نہ صرف ٹریڈیشنل میڈیا بلکہ جو سوشل میڈیا اس کو بھی یوز کرنا پڑے گا. ایک نیشنل ایکشن پلان ہم کو بنانا پڑے گا ٹو اسٹرینتھن نیشنل نیریٹو، اور یہ جتنا بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ جو ڈیپ اسٹیٹ فیک کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم کو جو ہے ٹیکل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو کریکولم کے اندر بھی ہم کو ایک جو ہے چیپٹر لگانا پڑے گا جس میں ہم بتا سکے کہ بھئی یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کے زیادہ ڈینجرز ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اب نیپرا کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور انہوں نے فارمل ایک پیٹیشن ڈالا ہے، پروپوز کر رہے ہیں وہ 1.71 روپیز پر یونٹ کا ڈیکریز یہ الیکٹریسٹی ٹیرفز کے اندر، اور یہ ساری کی ساری بات انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی تھی اور اس نے اگری کیا تھا، یہ زیادہ چاہتے تھے لیکن آئی ایم ایف نے زیادہ نہیں مانا، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو یہ اب پروپوز کر رہے ہیں یہ کٹ، جس کو کہ امپلیمنٹ کیا جائے گا تھرو رائز ان ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈی. اور انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے یہ کہ یہ سب کو جتنے بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انکلوڈنگ کے الیکٹرک، اس کو بولا جائے فرام اپریل ٹو جون 2025 یعنی کہ تین مہینے کا تھوڑا چھوٹ دینے کی ضرورت ہے. لائف لائن ڈومیسٹک کنزیومرز جو ہے وہ اس میں کور نہیں رہیں گے. نیپرا جو ہے جی اب وہ اسکیڈول ہیئرنگ کرے گا اس کی پٹیشن کی اپریل 4 کو، اور اگر یہ اپروو کر دیا اس نے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو سبسڈی دے گی 1.71 روپیز پر یونٹ ٹو الیکٹریسٹی کنزیومرز. पाकिस्तान के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का इन मेनी सेक्टर्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसका बात किया जी। बहुत ही जो ब्राइट पाकिस्तानी माइंड है बिलाल बिन साकिब, जो कि सीईओ हैं पाक क्रिप्टो काउंसिल के, और इनको स्पेशली इंग्लैंड से मंगवाया गया है, और ये आजकल एज चीफ एडवाइजर ऑन फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो जो है वो उसमें मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको सर्विसेज ये दे रहे हैं। इन्होंने एक कहा कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश जो काउंसिल बनाई गई है इसका काम है कि ये रेगुलेट करे फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी। आमिर साहब, अभी क्रिप्टो करेंसी की हमने कल ही अभी खबर दी थी ना यूएई की, तो अब ये देखो जरा कि ये अब पाकिस्तान में भी उसने वो लड़के ने बात की है। वो कह रहे हैं जी ब्लॉक चेन एक्टिविटी जो है और ये लाइसेंसिंग सिस्टम्स और एक्सप्लोरिंग वेज टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रिप्टो रिलेटेड ऑपरेशंस, ये सब के जो है जिम्मेदारी मेरे पे डाला गया है जो हम जो है काउंसिल में करेंगे। पाकिस्तान वो कह रहे हैं जी कि अमंग वर्ल्ड्स टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड है जहां पे के क्रिप्टो का एडॉप्शन है, और यहां पे इस वक्त 20 मिलियन यूजर्स भी है, तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। ब्लॉकचेन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि ओवरसीज रिमिटेंसेज वर्थ 30 बिलियन US डॉलर्स एनुअली जो है इसमें आ सकता है। काउंसिल का काम है टू एंश्योर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहे, सिक्योर और रेगुलेटेड एनवायरमेंट रहे, और लॉसेज जो है उसका रिस्क रिड्यूस किया जाए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जाए इन क्रिप्टो स्पेस। वो कहते हैं जी कि ग्लोबली 0.24% ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो है वो अभी सिर्फ लिंक्ड है इलिसिट एक्टिविटी से, तो इसके अंदर हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जनाब अच्छी खबर थी पाकिस्तान से। 3 cops and 1 passerby जो है वो इंजर हुआ जी, एक ग्रेनेड का अटैक हुआ है कराची के अंदर पुलिस कैंप में कायदाबाद ब्रिज के पास। पुलिस जो है इस अटैक को टेररिस्ट एक्ट मान रही है, इसमें अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो डाल दी गई है। इंजर्ड जो है उनको मूव किया गया है जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के लिए, और उनमें उनकी कहा जा रहा है कि हालत जो है आउट ऑफ डेंजर है। मार्च के शुरू में भी 3 पुलिसमैन जो थे वो इंजर हुए थे एट पीड़ी पुलिस स्टेशन, जहां पे कि अनआइडेंटिफाई लोगों ने फिर एक ग्रेनेड फेंक दिया था पुलिस स्टेशन में, और फिर इसमें काफी जो लोग जख्मी, ये जो 3 हुए थे पुलिस वाले, इनको फिर हॉस्पिटल में मूव किया गया था। हिंदुस्तान जो है जनाब उसका सबसे अफसोस का वाकया, जब अंग्रेज की हुकूमत थी अमंगस्ट अदर थिंग्स जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था, 2 weeks अहेड ऑफ 106th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, इंग्लैंड के जो हैं कंजर्वेटिव एमपी उसने अर्ज किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ कैसे हुआ इसके लिए फॉर्मली आप अपोलोजाइज करो इंडियंस को। रॉब ब्लैकमैन एमपी हैं ये हैरो ईस्ट से, इन्होंने कहा है कि ये जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको माफी बोलना पड़ेगा। ये बात कर रहे थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उन्होंने कहा कि ये जो डेडली मैसेकर अमृतसर में हुआ था अप्रैल 13, 1919 में जब लोग इधर गैदर हुए थे ये बैसाखी का एक फेस्टिवल करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत ही शांति के तरीके से यानी कि पीसफुली ये जो थे ये इधर गैदर हुए थे, तो जनरल डायर जो था उसने ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री अपने ट्रुप्स को लेकर आया और उनको ऑर्डर दिया कि जो इनोसेंट लोग हैं इनके ऊपर फायर खोली जाए। जिशान दिखाएं वो उनको जो पार्लियामेंट में आज उन्होंने जो है वो बात कर रहे हैं, बॉब ब्लैकवर्ड ब्लैकमैन जो है एमपी। यस बिल्कुल एब्सोल्यूटली, ये देखिए इन्होंने आज बात बड़े स्ट्रांग अंदाज में जो है वो की है, और इन्होंने कहा जी कि ये जो इनोसेंट लोग थे इनको मारा गया बहुत ज्यादा वहां पे, और उस वक्त तक ये गोलियां चलाते रहे जिस वक्त तक एमिनिशन जो था वो खत्म इनका नहीं हो गया। उसके अंदर 1500 लोगों की डेथ हुई, 1200 लोग बहुत ही गंभीर अंदाज में जख्मी हुए, उनमें से बाद में बहुत सारे मरे। डायर जो था फिर उसको वॉज डिसग्रेस्ड और उसको कहा गया था कि तुमने जो किया है ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर एक स्टेन है। इन 2019 जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी थरीसा मे, उन्होंने इस चीज को, ये जो कत्ले आम हुआ था उसको रिकग्नाइज किया था अंडर यूके'स कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और उसके लिए उन्होंने फिर कहा था कि उसके लिए हमें जो है अफसोस है। और तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त की गवर्नमेंट भी कोई स्टेटमेंट दे सकती है। लूसी पॉवल जो कि हाउस लीडर हैं उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है उसको खड़ा किया है, और हम इंश्योर करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के जितने मिनिस्टर्स हैं वो आपकी ये बात सुने, और इससे पहले कि इसकी जलियांवाला बाग का कुछ एनिवर्सरी आ जाए तो पहले ही कुछ स्टेटमेंट उस पर दे दें। लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पंजाब असेंबली ऑफ इंडिया प्रताप सिंह बाजवा जो है लास्ट डे ऑफ बजट जो है उसके ऊपर इन्होंने काफी एक्यूज किया है आम आदमी पार्टी का जो पंजाब गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है और ये बहुत ही बायस किस्म का इनका तरीकाकार है विधानसभा में। और जो स्पीकर कुलतार सिंह जो सांधवान है वो भी बहुत गलत तरीके से ऑपोजिशन को शटअप कॉल दे देते हैं और आप गवर्नमेंट जो है बिल्कुल पूरी कोशिश करती है कि ऑपोजिशन का बात ना सुना जाए, तो ये बिल्कुल हाईली अनडेमोक्रेटिक जो है ये तरीका है। हालांकि जो सबसे बड़ी मेन पार्टी है वो कांग्रेस है, कांग्रेस की भी बात नहीं सुना जाता है क्योंकि कांग्रेस के एमएलए जब भी कोई आवाज उठाते हैं तो उनको जो है नहीं सुना जाता है। हालांकि कांग्रेस के लोग बहुत ही सही बात उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, जैसे कि क्यों मारा पीटा गया आर्मी कर्नल पुष्पिंदर बाथ को, क्यों ये डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो आपने 1100 रुपीस मंथली अलाउंस अनाउंस किया था औरतों के लिए वो क्यों नहीं किया है आपने, फिर जो है आपने तो प्रॉमिस किया था कि मालवा का कनाल बनाएंगे जो आपका बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो आपने तो उसमें बजट में कुछ भी उसका अनाउंस नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये बजट सेशन जो है ये बिल्कुल फॉर्स है, सिर्फ हमारी आवाजों को बंद किया गया है, ना तो ये कुछ इसमें मुद्दे सॉल्व किए हैं जैसे कि फार्मर्स के, उनको बल्कि बिट्रे किया है, उनके लीडर्स को पकड़ के अरेस्ट किया, उनकी ट्रॉलियां एसी गैस स्टोव सब उनसे छीन लिए थे, तो आप गवर्नमेंट कैसा चला रहे हो यहां पे। तो जनाब काफी एतराज किए। ऋतिक रोशन साहब जो हैं जनाब वो अब डेब्यू करने लगे हैं एज डायरेक्टर और बनाएंगे अपना जो पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइज का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है क्रिश 4। अपने डैड के साथ राकेश रोशन के साथ इन्होंने जो है काम पहले नहीं किया था, इनके फादर ने पहली 3 फिल्म्स बनाई थी और ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर नहीं शुरू किया था, एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था अपने डैड के साथ 17 ईयर्स पहले जब वो बना रहे थे शाहरुख खान सलमान खान स्टारर मूवी करण अर्जुन। तो 2012 में अग्निपथ का प्रमोशनल एक इवेंट था तो मीडिया से जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या आप क्रिश 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे वालिद साहब ही कर रहे हैं और कोई भी जो फिल्म है वही वो बना रहे हैं, अभी तो मैं खाली एक्टिंग करूंगा, डायरेक्शन जब होगी तब होगी और उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने डायरेक्ट किया है एक कमर्शियल फॉर एरो, आपको पता ही है ना वो बहुत हाई एंड अच्छा क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसके लिए इन्होंने एक एड बनाया। तो आज इन्होंने एक ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने बोला कि 25 ईयर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम स्टेपिंग बिहाइंड इट नाउ। तो ऐसा है। सिकंदर का जनाब आया है नया गाना हम आपके बिना और इसने आज लोगों को रुला दिया और कहते हैं बड़ा मास्टरपीस है जिसको कि गाया है अरिजीत सिंह ने। और ये जो है इसमें लोगों को कुछ प्लॉट की समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने आज बहुत सारे कमेंट्स इसके अंदर दिए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये हमको लग रहा है क्योंकि बहुत ही सैड लग रहे हैं इस गाने के अंदर जो सलमान खान है, तो लग रहा है कि ये जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है ये डेड है और सल्लू भाई जो है बस इसको इमेजिन करता रहता है हर वक्त, तो ऐसा कुछ प्लॉट दिखने में मिल रहा है, सुनने में भी मिल रहा है, तो अब पता नहीं असल में क्या स्टोरी है, देखेंगे अभी आ जाएगी ईद के ऊपर ये फिल्म तो फिर देखेंगे। कार्तिक आर्यन और फिल्म मेकर जो करण जौहर है उसका प्रोजेक्ट तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जो है वो जो है अब वैलेंटाइन्स डे 2026 में आएगी। लेकिन उससे पहले जो बहुत सारे न्यूज आ रहे थे कि जी दोनों के बीच में जो है एक्टर डायरेक्टर के बीच में बहुत ही फॉल आउट हो गया है, अब काम नहीं करेंगे, लेकिन आज ये बहुत ही सरप्राइज अनाउंसमेंट आया। इसके साथ साथ सैफ अली खान की जो अपकमिंग फिल्म है बड़ी थ्रिलर है ज्यूल थीफ द हाइस्ट बिगिंस जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, वो डायरेक्टली रिलीज की जाएगी नेटफ्लिक्स पे और स्ट्रीम भी की जाएगी अप्रैल 25 से, तो लोगों को इसका बड़ा इंतजार है क्योंकि जबरदस्त किस्म की ये लग रही है। सैफ जो है इसके अंदर कॉन मैन बना हुआ है और उसके साथ जो दूसरे लीड के अंदर हैं जयदीव अलावत वो जो है माफिया बॉस के तौर पर नजर आएंगे। डैरन गू जो है अब सर्व नहीं करेंगे एज हेड कोच ऑफ लाहौर कलंदर्स फॉर PSL 10 क्योंकि उनके खुद के कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आगे है, इनका बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है और इनका लीडरशिप जो था उसने बहुत ही पैशन क्रिएट किया था कलंदर्स के सेटअप के अंदर, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर फॉर GT20 लीग के लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अनअवॉइडेबल कमिटमेंट्स की वजह से मैं इस साल कोच का रोल नहीं ले सकूंगा। अकॉर्डिंग टू PCBE टिकट्स जो है PSL 10 के लिए वो अब अप्रैल 3 से सेल के ऊपर जा रहे हैं, और ऑनलाइन टिकट्स का सेल जो है थर्सडे अप्रैल 3 से, और फिजिकल जो टिकट्स है उसका सेल अप्रैल 7 से चालू किया जाएगा फ्रॉम डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑफ प्राइवेट कुरियर कंपनीज। प्राइसेस की जो कीमत है उसमें, जो टिकट्स की जो प्राइसेस है उसमें डिफरेंस रहेगा कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के वेन्यूज के लिए, एंड दे विल डिफर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सीटिंग कैटेगरीज एंड मैचेस। मिनिमम प्राइस जो है वो है पाकिस्तानी रूपीज 650, हाईएस्ट जो है वो है 12,500, और ये अवेलेबल रहेंगे जनरल एनक्लोजर, फर्स्ट क्लास, प्रीमियर, वीआईपी, वीवीआईपी और गैलरी के लिए। ओपनिंग मैच जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कलंदर्स के बीच में रावलपिंडी क्रिकेट मैच में, क्रिकेट क्लब, क्रिकेट स्टेडियम में होएगा, उसका प्राइस रेंज करेगा 1000 पाकिस्तानी रुपीज से 8500 के बीच में। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फॉर्मर पाकिस्तानी पेसर उमर गुल, जो कि अब शायद रोल ले सकते हैं एज बांग्लादेश मेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के तौर पे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत ही नाखुश है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट बॉलिंग कोच आंड्रे एडम्स, और सोच रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए। हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है अंटिल फरवरी 2026, लेकिन वो इसको हटाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गुल एंड ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट जो है एडम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और दोनों का जो एसोसिएशन है पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के साथ रहा है एज बॉलिंग कोच, और गुल जो है इससे पहले कोच कर चुके हैं अफगानिस्तान का क्रिकेट टीम को भी। तो अभी देखेंगे जनाब के क्या होता है।
तो ये थी हमारी गर्मा गर्म खबरें।
हाँ भाई, पाकिस्तान में वो कह रहा बड़ा पोटेंशियल है क्रिप्टो का, वाह 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 क्या बात है,
क्या मिलियन डॉलर्स वहां भी आ ही जाएंगे।
हाँ जी बिल्कुल, मिलियन डॉलर्स नहीं होते, डॉलर होते हैं, डॉलर।
तो
रोज मैं तुम्हारा करेक्शन कराती हूँ, तुम रोज कहते हो
पाकिस्तान प्रॉब्लम पॉलिसीज का,
पॉलिसीज का है, लोगों का नहीं है। लोग बहुत टैलेंटेड है, लोग काम करना भी चाहते हैं।
बनाए आप लोगों को मौका दें, इदारों को भी मौका दें,
फिर आप देखो लोग कैसे दबादब काम करते हैं। ये सारा आपका टेररिज्म वेरिज्म खत्म हो जाएगा जिस वक्त लोगों के पास काम आ जाएगा,
बिजी हो जाएंगे ना काम करने में। अब ये चोरियां चकारियां दूसरी चीजों में अब लोग कमाने लगेंगे, तो उन्हें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आगे पीछे जो है वो मामलात करें या कुछ और गलत कामों में, खासकर जो यूथ है वो करें। लेकिन देखे मैंने कहा ना, एशिया जब पावर जाएगी इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान भी फिर एशिया में ही है।
नहीं नहीं, ये सारा ये ब्लॉक बनेगा, ये इसके अंदर आप देखना कि साउथ कोरिया, जापान, ये भी क्योंकि नाराज हो रहे हैं ना उससे, अमेरिका से, तो ये सारा ये अपना बनाएगा। और फिर जो ब्रिक्स है वो बहुत ऐसे ऊपर जा रहा है, तो वो भी जो है उसके अंदर, उसमें भी मामलात आएंगे। मेन 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 जो मैं कह रही हूँ ना कि जो पावर का वो जो रहेगा ना, वो जो बीकन लाइट रहेगी वो चाइना रहेगी, चाइना रहेगी वो।
चलो जनाब, चाइना चाइना
और उसके नीचे बच्चे रहेंगे
और पाकिस्तान
बाकी सारों को वो गोद ले लेगा,
पाकिस्तानी चीनी भाई भाई।
हाँ,
तो जैसे अभी अमेरिका, जैसे अभी अमेरिका कनाडा रहे ना 200 साल तक, इससे ज्यादा तक, आप देखिएगा अगले 200-300 साल
इंशाल्लाह
चीनी पाकिस्तानी भाई भाई।
हाँ भाई भाई, और बाकी सारे बच्चे होंगे इनके,
बाकी अपने अपने हिसाब। देखिए हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते,
नहीं नहीं, कभी भी किसी के लिए गोद ले लेंगे इनको, मैं तो ये कह रही हूं।
अपने अपने कैपेसिटी में खुश रहें, एंजॉय करें, और बल्कि एंजॉय का मजा लें,
एंजॉय का मजा लें, ये होता है।
और ना हमें छेड़े ना हम आपको छेड़ते,
हाँ
किसी को नहीं छेड़ना। चले जनाब, सियासी गुफ्तगू
ना छेड़ो ना छेड़ो।
चले जनाब, आज इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, रमजान और जुम्मतुल विदा और संडे को ईद होने जा रही। तो शाजा जी,
अगर तुम इतने भूखे हो, तुमने इफ्तारी तो कराई नहीं है, कोई ईद ही दे दो।
मैंने ईदी मैंने आपको लाके दी है मिठाई, आप घर लेके जाइएगा आज।
अच्छा,
हाँ आपके टेबल पर रख दिए मैंने।
अच्छा अच्छा,
तो आप इंशाल्लाह उस मिठाई का मजा लें।
अच्छा, एंजॉय का मजा लें।
मतलब वही कहते हैं ना कि इतने बुरे हालात हो आ गए,
हाँ,
कि एक भी इफ्तारी की दावत नहीं।
नहीं, इफ्तारी की दावतें बहुत थी, लेकिन जाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो आपके जो भाई साहब है ना ताय साहब, वो कहते हैं कि इफ्तारी घर में कहीं नहीं जाना है,
हर अकलमंद आदमी यही कहता है।
ना मुझे कहीं जाना है ना तुमको कहीं जाना है।
बिल्कुल सही करते हैं, दुरुस्त फैसला है।
है दुरुस्त है,
दुरुस्त है।
तो जाहिर है तुमने तो प्लॉट लेना है ना वहाँ पे उसके साथ, तो तुमने तो उसके हर फैसले को दुरुस्त
किया। टाइम हो गया जाने का, वरना हमारे पीछे से इंजीनियर साहब जो है हमारी ट्रांसमिशन बंद कर देंगे।
कर दें।
तो शरद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, और एडवांस ईद मुबारक आपको।
मंडे आप आए हमारे सारे सुनने वालों को भी जी एडवांस।
बिल्कुल, तमाम सुनने और देखने वालों को भी पूरी 770 के मैनेजमेंट की तरफ से, आवाज की टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मंडे जब आपसे मुलाकात होगी तो ईद गुजर गई होगी होपफुली। तो शरद जी आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें ईद के बाद तक, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी। चलें जनाब, इजाजत लेने का टाइम आ गया, एंजॉय कीजिए, और वेदर थोड़ा खराब हो रहा है वीकेंड पे, आप एहतियात करिए, ड्राइव सेफली, और अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ ईद मनाइए। एक बार फिर ईद मुबारक, और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इजाजत लेते हैं। आपका मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो मंडे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
और महफूज तरीके से गुड एक्सचेंज रेट के साथ $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफर कोड
करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। रमजान में लैम्पफाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज ही लैम्पफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lampfi.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
770 AM दी नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।